एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो लिखी तो गई हजारों साल पहले, पर जब आप उसकी बातें सुनेंगे ना,
हाँ, ऐसा लगेगा जैसे कल की ही बात हो। हम बात कर रहे हैं जापान की सेशो नागोन की लिखी द पिलो बुक की।
द पिलो बुक नाम भी बड़ा दिलचस्प है।
बिल्कुल। और ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है, बल्कि लगभग हजार साल पहले जापान के हेयान दौर की एक दरबारी महिला थी। उनकी नजरों से देखे गए जीवन, समाज, सौंदर्य, इन सब का एक कह सकते हैं मिला जुला संकलन है।
इसमें सूचियां हैं, छोटे छोटे किस्से हैं, उनकी अपनी राय है।
जी।
और ये आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि रोजमर्रा की जो भागदौड़ है ना, उसमें भी अगर हम थोड़ा रुकें, ध्यान दें।
हाँ, तो अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता और मतलब ढूंढा जा सकता है। ये एक तरह से हमें सिखाती है कि कैसे कैसे ध्यान से देखना, महसूस करना और उन छोटे छोटे पलों को सहेजना जीवन को ज्यादा मायने दे सकता है।
और साथ ही उस प्राचीन जापानी संस्कृति की एक झलक भी मिलती है ना, जहाँ शिष्टाचार, सौंदर्य बोध, इन सब का बहुत महत्व था।
बिल्कुल, एक पूरी अलग दुनिया।
तो फिर शुरू करते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने हमें ये नजरिया दिया। सेई शोनागोन कौन थी ये, क्या खास था इनमें?
देखिए, इनका जन्म 10वीं सदी के आखिर में, मतलब लगभग 966 ईसी के आसपास हुआ माना जाता है। और ये जापान की महारानी थी, महारानी तेशी, जिन्हें सादाको भी कहते हैं, उनकी सेविका थी।
वो भी हेयान काल में, जब कहते हैं जापानी संस्कृति अपने शिखर पर थी।
जी, लेकिन सिर्फ सेविका कह देना शायद काफी नहीं होगा। वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, पढ़े लिखे और साहित्यिक परिवार से थी, क्योहारा परिवार।
अच्छा।
और उस जमाने में सोचिए, एक महिला के लिए चीनी और जापानी साहित्य, कविता और दरबार के जो जटिल नियम कायदे होते थे,
हाँ,
उनका इतना गहरा ज्ञान रखना, ये बहुत बड़ी बात थी।
तो वो सिर्फ एक परिचारिका नहीं थी, बल्कि शायद महारानी की साथी, सलाहकार जैसी उस माहौल का हिस्सा थी।
हाँ बिल्कुल, इसी वजह से वो दरबार को इतने करीब से अंदर से देख पाई, समझ पाई।
और सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसे अपने अंदाज में दर्ज भी किया। सुना है बहुत तेज बुद्धि की थी, हाजिर जवाब।
हाँ, और मजाकिया भी, अपनी राय रखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। उनकी एक समकालीन लेखिका थी, मुरासा की शिकिबो।
हाँ, जिन्होंने द टेल ऑफ गेंजी
जी
लिखी, वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं।
जी तो कहते हैं कि जहां मुरासा की थोड़ी गंभीर अंतर्मुखी थी, वही शोनागोन एकदम उलट, आत्मविश्वास से भरी, बहिर्मुखी। कुछ लोग तो उन्हें थोड़ा घमंडी भी मानते थे शायद।
अच्छा।
और यही जो उनका व्यक्तित्व था ना, दरबार के अंदरूनी जीवन की साक्षी भी और साथ में एक बाहरी थोड़ी आलोचनात्मक नज़र भी, यही उनके लेखन को इतना अनूठा बनाता है। उनका मकसद शायद सिर्फ घटनाओं को लिखना नहीं था, बल्कि उस पूरी जीवन शैली का जो सार था ना।
उसे पकड़ना था, उसकी सुंदरता, उसकी पेचीदगियां।
हाँ, और कभी कभी उसकी मजेदार बातें भी।
चलिए अब किताब पर आते हैं। द पिलो बुक, जापानी में नाम है मकुरा नो सोशी। ये नाम भी बड़ा अजीब सा लगता है, तकिया किताब।
हाँ, दिलचस्प है। कहते हैं कि उस समय लकड़ी के तकिया बक्से होते थे, जिनमें लोग अपनी जरूरत की चीजें, शायद लिखने पढ़ने का सामान भी रखते थे। तो हो सकता है शोनागोन अपने नोट्स या कागज वगैरह उसी बक्से के पास रखती हों।
अच्छा, तो वहीं से ये नाम पड़ गया। मतलब ये थोड़ा निजी और अनौपचारिक होने का इशारा करता है।
बिल्कुल, और ये कोई पारंपरिक किताब है भी नहीं, ये जापानी साहित्य की खास विधा है, जुई हत्सु।
जुई हेत्सु, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब कुछ ऐसा है जैसे ब्रश के पीछे चलना, या कह लें जैसे जैसे मन में आए लिखते जाना। कोई तयशुदा कहानी नहीं, कोई क्रम नहीं, बस जैसे विचार आए, कोई बात याद आई, कोई नजारा देखा,
उसे लिख लिया, तो ये एक डायरी जैसी हुई।
डायरी से कुछ ज्यादा। इसका असल मकसद था जीवन के उन क्षणों को पकड़ना जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, वो क्षणभंगुर पल, चाहे वो सुंदरता का एहसास हो, कोई मजेदार बात, किसी चीज पर चिढ़ हो, या कोई अचानक आई समझ।
अच्छा।
शोनागोना हमें दिखाती हैं कि जीवन की छोटी छोटी डिटेल्स में कितना कुछ छिपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। उनके लिए एक तराशा हुआ सौंदर्य बोध और एक तेज, कभी कभी आलोचनात्मक बुद्धि, यही जीवन को समझने और उसे दर्ज करने का तरीका था।
तो किताब पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम उनके विचारों के साथ बह रहे हैं, मतलब कभी प्रकृति का वर्णन, कभी लोगों पर टिप्पणी।
हाँ बिल्कुल, आप एक पल वसंत की सुबह के खूबसूरत वर्णन में खोए होंगे, अगले ही पल घृणित चीजों की उनकी लिस्ट पढ़कर मुस्कुरा देंगे, और फिर अचानक किसी शाही समारोह के बारीक विवरण में पहुंच जाएंगे। ये विचारों का एक मुक्त प्रवाह है।
और इस प्रवाह में कुछ विषय बार बार आते होंगे?
जी हाँ, जैसे प्रकृति की सुंदरता, दरबार के रीति रिवाज और तौर तरीके, इंसानी रिश्ते, समाज में कौन कहाँ है, और सबसे बढ़कर महारानी तेशी के लिए उनकी गहरी निष्ठा और लगाव। यह उस दुनिया का आईना है जो सुंदरता, बुद्धि और भावनाओं की बारीकियों पर चलती थी।
समझने के लिए जानकारों ने द पिलो बुक को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा है ना? हालांकि शायद शोनागुन ने खुद ऐसा नहीं किया होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बाद के विद्वानों ने किया है। पहली और शायद सबसे मशहूर श्रेणी है सूचियाँ, लिस्ट्स। आप इन्हें मन की तालिकाएं भी कह सकते हैं।
अरे हाँ, ये लिस्ट तो बहुत सुनी है, कहते बड़ी मजेदार होती है।
कमाल के हैं। और ये कोई वैज्ञानिक लिस्ट नहीं है कि ये चीजें इस कैटेगरी में आती हैं, नहीं, ये पूरी तरह से शोनागुन की अपनी पसंद नापसंद, उनके मूड, उनके निजी फैसलों पर टिकी हैं।
जैसे कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे कुछ तो बहुत काव्यात्मक है, शानदार चीजें, फूल वाले पेड़, या वो मशहूर लाइन जिससे किताब शुरू होती है, वसंत में भोर सबसे सुंदर होती है। ये उस समय का जो अभिजात्य वर्ग था ना, उनका सौंदर्य बोध दिखाता है,
जिसे मियाबी कहते हैं, मतलब हर चीज में सुंदरता नफासत खोजना।
बिल्कुल। और प्रकृति और इंसानी भावनाओं का कितना गहरा रिश्ता था, ये भी पता चलता है।
लेकिन सुना है कुछ लिस्ट मजाकिया भी हैं, थोड़ी तीखी।
अरे हाँ, सबसे मशहूर है घृणित चीजें,
हेटफुल थिंग्स।
जरा सोचिए, वो लिखती हैं कि उन्हें क्या क्या बुरा लगता है। कोई मेहमान जो तब आ जाए जब आप बहुत व्यस्त हों और लंबी बातें करने लगे।
ये तो आज भी होता है।
बिल्कुल। या सोते हुए चेहरे पर मक्खी का बैठना, खर्राटे लेने वाले मर्द, दूसरों के नकल करने वाले लोग। पढ़कर हंसी भी आती है और हैरानी भी कि हजार साल पहले की चिढ़ आज भी कितनी अपनी सी लगती है।
सही कहा, एकदम प्रासंगिक। इसी तरह उदास करने वाली चीजें, शर्मिंदा करने वाली चीजें भी हैं।
हाँ हैं। इन लिस्ट के जरिए वो दुनिया को अपनी नज़र से देखती हैं, उसे अपने हिसाब से तरतीब देती हैं। ये उनके दिमाग में झांकने का एक तरीका है।
अच्छा, ये तो हुई सूचियाँ, लेकिन किताब में और भी है। दूसरी श्रेणी क्या है?
दूसरी श्रेणी है किस्सा गोई वाले निबंध, एनेक्डोटल एसेज, मतलब दरबारी जीवन के छोटे छोटे नज़ारे, घटनाएं, बातचीत के अंश। ये उस दुनिया की जीती जागती तस्वीरें हैं।
इनमें उनकी हाजिर जवाबी के किस्से भी आते हैं। वो बर्फ वाला किस्सा सुना है मैंने।
हाँ, वो बहुत मशहूर है। एक सुबह बर्फ गिरी हुई थी तो महारानी तेशी ने एक पुरानी चीनी कविता का हवाला देते हुए पूछा, शियांगलू चोटी पर बर्फ कैसी है? अब बाकी लोग तो समझ नहीं पाए
कि महारानी क्या कह रही है।
हाँ, पर शोनागुन फौरन इशारा समझ गई और उन्होंने पर्दे उठवा दिए ताकि बाहर का बर्फीला नजारा दिखे, बिल्कुल कविता की तरह। ये दिखाता है कि उस समाज में साहित्यिक जानकारी और तेज दिमाग की कितनी कद्र थी। ये एक तरह की सोशल करेंसी थी।
दिलचस्प। और क्या होता था इन किस्सों में?
वो सिर्फ बड़ी घटनाओं का जिक्र नहीं करती, जैसे कोई शाही जुलूस है या कोई धार्मिक त्यौहार जैसे कामो महोत्सव, तो उसका वर्णन करते हुए वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं कि इस दरबारी ने कैसा कपड़ा पहना था, भीड़ का बर्ताव कैसा था, कोई अफसर कैसे गड़बड़ कर रहा था।
अच्छा, ये बारीकियां उस सीन को जिंदा कर देती होंगी।
बिल्कुल। और थोड़ी गपशप, थोड़ी सामाजिक टिप्पणी भी है, कोई शर्मिंदगी वाला पल, किसी की छोटी मोटी भूल, अजीब सी स्थितियां।
जैसे?
जैसे सुबह सुबह प्रेमी का बेढंगे तरीके से जाना, या कोई उपदेशक मंच पर अपनी लाइनें भूल जाए। ये दिखाता है कि उस समाज में दिखावा, मतलब सही शिष्टाचार गा बनाए रखने का कितना दबाव था। जरा सी चूक और बात बन जाती थी।
और फिर तीसरी श्रेणी,
वो शायद ज्यादा निजी है।
हाँ।
तीसरी श्रेणी है डायरी जैसे अंश, डायरी लाइक सेक्शंस।
जी।
ये थोड़े लंबे हैं, ज्यादा कहानी जैसे हैं। इनमें शोनागुन के दरबारी जीवन की कुछ खास घटनाएं हैं और खासकर महारानी तेशी के साथ उनका जो रिश्ता था उस पर फोकस है।
यहाँ वो महारानी के दरबार के अच्छे दिनों की बात करती होंगी।
जी, वो बताती हैं कि महारानी का दरबार कितना जीवंत था, बौद्धिक माहौल था, सब खुश थे। महारानी के लिए उनका जो प्यार और इज्जत है ना, वो इन पन्नों पर साफ दिखता है। वो बार बार महारानी की अच्छाई, उनकी समझदारी, उनकी दयालुता का जिक्र करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उन यादों में खोई हुई हैं।
लेकिन फिर हालात बदले भी तो थे, महारानी के परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ था।
हाँ, और वो किताब के सबसे मार्मिक, सबसे दर्द भरे हिस्से हैं। महारानी के परिवार, फुजीवारा वंश का राजनीतिक पतन, पिता की मौत, भाइयों का देश निकाला, महारानी को महल से हटाया जाना, ये सब त्रासदियाँ।
और शोनागुन तब भी उनके साथ रही?
हाँ, उनकी वफादारी जरा भी कम नहीं हुई। ये हिस्से किताब को एक गहरी उदासी देते हैं, एक एहसास कि सब कुछ क्षणभंगुर है, जिसे जापानी में मोनोनो अवारे कहते हैं, चीजों के गुजर जाने का एक मीठा सा दुख।
इन्हीं हिस्सों में वो अपने बारे में भी लिखती हैं कि लोग उन्हें अभिमानी समझते थे या
हाँ, कभी कभी वो दरबार में अपनी जगह, अपनी इज्जत या बदनामी, और ये भी कि ये किताब लिखनी शुरू कैसे हुई। वो बताती हैं कि एक बार महारानी ने उन्हें बहुत सारा बढ़िया कागज दिया और पूछा इस पर क्या लिखें,
और शायद वहीं से इस पिलो बुक की शुरुआत हुई। क्या बात है।
तो इन सारी बातों से, मतलब सूचियों, किस्सों, यादों से कुछ खास विषय या संदेश उभर कर आते हैं। पहला तो है ओकाशी, ओकाशी का सौंदर्य बोध।
ओकाशी, ये क्या है?
ओकाशी मतलब हर वो चीज जो आकर्षक है, प्यारी है, मजेदार है, दिलचस्प है, जिसमें एक तरह की हल्की पुल्की स्मार्टनेस हो। ये जीवन के हल्के, चौंकाने वाले, मजेदार पहलुओं की तारीफ है। जैसे आज हम किसी एड की अच्छी लाइन पर या बच्चे की मासूम शरारत पर खुश हो जाते हैं ना, कुछ वैसा ही।
अच्छा, और दूसरा?
वो नफासत वाली बात। हाँ, दूसरा है परिष्कार और सुरुचि का महत्व, यानी मियाबी। हेयान दरबार में हर चीज, कविता, कपड़े, बात करने का ढंग, सब में एक स्तर की उम्मीद की जाती थी। शोनागुन लगातार लोगों और चीजों को इसी कसौटी पर परखती हैं।
ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आज हम अपने आप को कैसे पेश करते हैं, खास मौकों पर सलीका दिखाना, हालांकि आज शायद बाहरी दिखावा ज्यादा है।
शायद। तीसरा अहम विषय है प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता। उस दुनिया में मौसम सिर्फ बदलता नहीं था, वो जीवन की लय तय करता था। त्योहार, कविता, मूड, सब उससे जुड़े थे। प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, वो एक एक्टिव पार्टनर थी। चिड़िया की आवाज, चांदनी, बर्फ, सबका मतलब था।
जैसे हमारे यहाँ भी तो है, त्योहार मौसम से जुड़े हैं, हमारी कला कविताओं में प्रकृति भरी पड़ी है।
बिल्कुल। चौथा है भाषा, बुद्धि और हाजिर जवाबी की ताकत। उस दरबार में शब्द हथियार भी थे और कला भी। सही वक्त पर सही कविता कह देना, किसी साहित्यिक इशारे को समझ लेना, ये बहुत जरूरी था। शोनागुन खुद इसमें माहिर थी।
ये हमें आज भी याद दिलाता है कि साफ और असरदार तरीके से बात करना कितना जरूरी है ना, चाहे दफ्तर हो या घर।
सही कहा। पांचवा है दरबार की महिलाओं की जटिल दुनिया। ये किताब उस दौर की औरतों की जिंदगी का एक दुर्लभ नजरिया पेश करती है, वो भी एक औरत की नजर से। शोनागुन दिखाती हैं कि कैसे संस्कृति, सुंदरता, रिश्तों के जरिए औरतें अपना असर डालती थीं। महारानी देशी का दरबार तो एक तरह का बौद्धिक केंद्र था, जहां औरतों की प्रतिभा की कदर थी।
ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल हालात में भी औरतें अपनी जगह बना लेती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं।
जी। और आखिर में क्षणिकता और विषाद का भाव, यानी मोनोनो अवारे। हालांकि किताब ज्यादातर हल्की फुल्की है,
ओकाशी वाली,
पर खासकर महारानी की कहानी वाले हिस्सों में गुजरे वक्त की याद और चीजों के बदल जाने का एक दर्द महसूस होता है। ये एहसास की सुंदरता, खुशी, जीवन सब क्षण भंगुर है।
जैसे हम भी तो कभी कभी पुराने अच्छे दिन याद करके उदास हो जाते हैं ना।
हाँ, बिल्कुल। और किताब में ऐसी कई बातें हैं जो सीधे दिल को छूती हैं या सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो शुरुआत वाली बात, वसंत में भोर सबसे सुंदर होती है। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। बारीकी से देखो और फिर तय करो कि तुम्हें क्या सुंदर लगता है।
और वो घृणित चीजें वाली लिस्ट, उसका निचोड़ यही है कि कुछ चीजें बस चिढ़ाती हैं, चाहे वो बिन बुलाए मेहमान हो या रात को भिनभिनाती मक्खी। कितनी सच्ची और मानवीय बात है, हजार साल बाद भी हंसी आ जाती है सोचकर।
महारानी के लिए उनकी जो वफादारी थी, उसका सार शायद इस बात में है। जब महारानी पर बुरा वक्त आया और लोगों ने मुझे ताने दिए कि मैं क्यों अब भी उनके साथ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ा। उनके साथ होना ही सब कुछ था। वो बर्फीली सुबह और उनका वो सवाल, शियांगलू चोटी पर बर्फ कैसी है, उस याद का कोई मोल नहीं। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, गहरा जज्बाती रिश्ता था।
और पूरी किताब पढ़कर ये एहसास होता है कि उनका मूल मंत्र शायद ये था, जिंदगी की असली खूबसूरती अक्सर बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी ध्यान से देखी गई चीजों में होती है। वो बड़े फलसफों के बजाय खास पलों पर जोर देती हैं।
रिश्तों पर भी उनकी नजर तेज थी। एक जगह वो लिखती हैं, भाव कुछ ऐसा है, एक अच्छा प्रेमी सुबह जाते वक्त भी सलीका दिखाएगा, लेकिन शायद दरवाजे से निकलते ही वो उस रात के बारे में भूल जाएगा। ये रोमांटिक ख्यालों और असलियत के फर्क को दिखाता है।
तो अब बड़ा सवाल ये है कि हम आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में शोनागुन के इस हजार साल पुराने नजरिए से क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? पहली चीज जो मुझे लगती है वो है अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखना, महसूस करना।
हाँ, मतलब सिर्फ देखना नहीं, अवलोकन करना। मौसम कैसे बदल रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, दिन के वो छोटे छोटे पल जो यूं ही निकल जाते हैं, उनमें सुंदरता खोजना।
शायद एक छोटी सी डायरी रखें, रोज कुछ ऐसा लिखें जो दिलचस्प लगा, जिसने ध्यान खींचा।
अच्छा आइडिया। और दूसरा, लोगों को और सामाजिक स्थितियों को बेहतर समझने की कोशिश करना, जैसे सोना गोन करती थी। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, इस पर गौर करना। इससे हमें रिश्ते समझने में, सामाजिक माहौल समझने में मदद मिल सकती है,
चाहे वो ऑफिस हो या परिवार। सही बात है। तीसरा, लिखने का तरीका बदलना। सिर्फ ये नहीं कि आज क्या क्या हुआ, बल्कि अपनी राय, अपनी पसंद नापसंद, अपनी भावनाएं लिखना। जैसे सोना गुन ने लिस्ट बनाई, ये खुद को जानने का एक मजेदार तरीका हो सकता है।
चौथा, सामाजिक नियमों और अपनी असलियत में तालमेल बिठाना। सोना गुन दरबारी नियम निभाती थी, पर अपनी आवाज, अपनी आलोचनात्मक नजर भी रखती थी। यह हमें सिखाता है कि कैसे किसी भी सिस्टम में रहते हुए भी हम अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं।
ये बहुत जरूरी है।
पांचवा, सौंदर्य बोध को बेहतर करना। सच्ची सुरुचि सिर्फ महंगी चीजों या ट्रेंड फॉलो करने से नहीं आती।
हाँ?
बल्कि चीजों को ध्यान से देखने, समझने और उन पर ईमानदारी से रिएक्ट करने से आती है। ये कला, संगीत, लाइफस्टाइल सब पर लागू होता है।
और छठा, अपनी बात कहने की कला। सोना गुन का जमाना कम शब्दों में गहरी बात कहने का था। यह हमें सिखाता है कि सोच समझकर बोलें, लिखें स्पष्ट और असरदार तरीके से।
कम शब्दों में ज्यादा बात कहना।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सिर्फ ध्यान से देखना, मतलब होशपूर्वक अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना, ये अपने आप में एक बहुत सार्थक अभ्यास हो सकता है। जरूरी नहीं कि ज्ञान सिर्फ बड़ी किताबों या फलसफों से ही ना आए।
हाँ, वो जिंदगी के अनुभवों को ईमानदारी से जीने और महसूस करने से भी आ सकता है।
बिल्कुल।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि हजार साल पुरानी बातें, खासकर वो घृणित चीजें जैसी लिस्ट, आज भी कितनी जानी पहचानी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इंसान अंदर से ज्यादा बदले नहीं हैं। और हाँ, महारानी के लिए उनकी जो वफादारी थी, खासकर मुश्किल वक्त में, वो वाकई दिल को छू जाती है।
तो कुल मिलाकर द पिलो बुक हमें यही याद दिलाती है कि ध्यान से देखना, सुंदरता महसूस करना और जीवन पर ईमानदारी से प्रतिक्रिया देना, ये खुद में जीने की एक कला है। ये साधारण में असाधारण ढूंढने की एक खूबसूरत मिसाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सेप्टा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।